Iran Radio Podcast.
रूजवेल स्ट्रीट पॉडकास्ट का ये 15वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। सत्ताईस नवंबर 1979 को दुनिया के मीडिया का फोकस न्यूयॉर्क पर था। यूनाइटेड नेशंस की ऊंची इमारत में सिक्योरिटी काउंसिल की एक खास मीटिंग हो रही थी। एजेंडा था ईरान यूएस संकट। उस समय के सिक्योरिटी जनरल कर्ट जोसेफ वाल्डहाइम ने फॉर्मल टोन में अपना बयान पढ़ा। इस मुद्दे की सभी बुनियादी बातें साफ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तेहरान में अपनी एम्बेसी पर कब्जा करने और अपने लोगों को हिरासत में लेने को लेकर परेशान है और ईरानी सरकार उस नाइंसाफी और ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए मुआवजा मांग रही है जो उसके हिसाब से पिछली सरकार ने किए थे। इस बयान में कि जो यूनाइटेड नेशंस आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सेक्शन में मौजूद है, भेदभाव की झलक साफ देखी जा सकती है। वाल्डहाइम ने बड़ी चालाकी से इस मुद्दे को ऐसे पेश किया जैसे ईरान ने पिछली सरकार से अपने अधिकार छीनने के लिए इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन किया हो। बहुत चालाकी से सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। ईरानी समाज का आरोप यूएस सरकार पर था, न कि पिछली सरकार पर। दूसरे शब्दों में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वाल्डहाइम ने ईरान यूएस रिश्तों के मुद्दे को इस तरह से पेश किया कि ईरानी सरकार ने पिछली सरकार से अपने अधिकार वापस लेने के लिए इंटरनेशनल नियमों को तोड़ा है। यह स्वाभाविक था कि इस तरह की गलत बयानी से दुनिया में ईरानियों की छवि खराब होती। सिक्योरिटी जनरल के भाषण के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के उस समय के प्रेसिडेंट सर्जियो पालासियोस की बारी थी। वो पोडियम पर जब आए तब हॉल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी बंद दरवाजों के पीछे पत्रकारों की कानाफूसी और कैमरों के फ्लैश से टूटी। पालासियो ने घोषणा की कि मुहर्रम आने और ईरान में तासुआ और आशुरा के कारण, जिसने देश के अंदरूनी माहौल पर पूरी तरह से असर डाला, साथ ही ईरान के एक्टिंग फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अबुल हसन बनी सदर की गैर मौजूदगी के कारण कोई भी आखिरी फैसला 5 दिन बाद के लिए टाला जा रहा है। ये 5 दिन एक विवादित डेवलपमेंट का मंच बन गए। अगले सेशन से कुछ ही समय पहले तेहरान में एक अजीब खबर आई। रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के एक्टिंग फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अबुल हसन बनी सदर ने इस्तीफा दे दिया। इतने बड़े संकट के बीच इस इस्तीफे का दुनिया के लिए क्या मैसेज था? नई बनी ईरानी सरकार अपने सबसे सेंसिटिव मोड़ पर अंदरूनी फूट का सामना कर रही है, लेकिन इस इस्तीफे की असली वजह क्या थी? इस अचानक इस्तीफे का बैकग्राउंड बनी सदर और ईरानी रेडियो और टेलीविजन के हेड सादिक कुतुबजादे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों में ढूंढना होगा। यूनाइटेड स्टेट सरकार से कैसे निपटा जाए, इस मुद्दे पर दोनों के बीच गहरे मतभेद थे। अपने नोट्स और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी अखबार के साथ एक इंटरव्यू में बनी सदर ने अपनी पॉलिसी इस तरह बताई। मैं नहीं चाहता था कि ईरान इस संकट में अकेला पड़ जाए। इसके उलट, मैंने अमेरिका को अलग थलग करने का टारगेट रखा था। मैं सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसी वोटिंग नहीं होने देता जिससे हम दुनिया में अकेले दिखें, लेकिन अंदरूनी तोड़ फोड़ की वजह से ये पॉलिसी बेअसर हो गई। दूसरी ओर कुतुबजादे के लिए ये कोई मीडिया पोजीशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल पहचान का मुद्दा था। उन्होंने कहा कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर अपने सभी कानूनी रूपों के साथ कैपिटलिस्ट सिस्टम, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव का एक टूल है। इससे वो सोशलिस्ट झुकाव और एंटी एम्पीरियलिस्ट बहस की ओर बढ़ गए। ऐसे फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी काउंसिल में समझौते का कोई मतलब नहीं था। जो बात मायने रखती थी वो ये थी कि दबाव के सिस्टम के खिलाफ घरेलू पब्लिक ओपिनियन को एकमत किया जाए, भले ही इसकी कीमत ईरान पर इंटरनेशनल दबाव ही क्यों ना हो। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी अखबार के बाद के इशू में बनी सदर का कुतुबजादे के खिलाफ एग्रेसिव टोन साफ था। एक नोट में एक बोल्ड हेडलाइन के साथ लिखा था, सुरक्षा परिषद के प्रति लोगों का अविश्वास जहरीले रेडियो और टेलीविजन प्रचार का परिणाम है। इस नोट के लेखक ने कुतुबजादे पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र के साथ किसी भी बातचीत के खिलाफ जनमत को जहरीला करके नंगे पांव लोगों की भावनाओं को लगातार भड़काकर कूटनीति को पंगु बनाने का आरोप लगाया। लेकिन बनी सदर और उनके अखबार ने इन सभी विवादों में पश्चिमी मीडिया की निर्णायक भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसी दुनिया में जहां अमेरिकी मीडिया साम्राज्य दिन रात ईरानियों को बंधक बनाने वाले जंगलियों के रूप में पेश कर रहा था, बनी सदर ने कुछ घरेलू टेलीविजन कार्यक्रमों पर सभी विफलताओं का दोष मढ़ दिया। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर मेहदी बाजरगान के इस्तीफे का व्हाइट हाउस में उतना स्वागत नहीं हुआ जितना विदेश मंत्रालय के प्रमुख के तौर पर बनी सदर के इस्तीफे का हुआ। वहीं कुतुबजादे रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के ज्यादा करीब थे और इससे भी अहम बात उनका समाजवादी और साम्राज्यवाद विरोधी झुकाव मजबूत था। वो यूनाइटेड नेशंस को भी अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव का एक टूल मानते थे। वॉशिंगटन ने तुरंत रिएक्ट किया। जिमी कार्टर की डायरी में लिखा है, कुतुबजादे ईरान के जोडी पावेल बन गए हैं। एक तुलना जो समझ में आती है, जोडी पावेल अमेरिका में सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं थे, वे कार्टर के भाषण लिखने वाले और व्हाइट हाउस के मीडिया नैरेटिव के आर्किटेक्ट थे, एक अधिकारी से कहीं ज्यादा की भूमिका में। और अब कार्टर मान रहे थे कि दूसरी तरफ कोई ऐसा आ गया है जो मीडिया की ताकत को समझता है और इसका इस्तेमाल क्रांति का नैरेटिव बनाने के लिए कर रहा है। तीन दिसंबर 1979 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार ईरान की मौजूदगी के बिना। नतीजा रेजोल्यूशन 457 पास हो गया, जिसमें मांग की गई थी बंधकों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई, दोनों पक्षों से सहम बरतने की अपील, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पर वियना कन्वेंशन का जिक्र। रेजोल्यूशन में अमेरिका की लगभग सभी मांगें शामिल थी, लेकिन ईरान की मुख्य मांग शाह के एक्सट्रेडिशन पर चुप्पी साध ली गई थी। रिवॉल्यूशनरी काउंसिल को इसका अंदाजा था और उसी दिन उसने रेजोल्यूशन को भेदभावपूर्ण और पक्षपाती करार देकर खारिज कर दिया। अमेरिकी सरकार ने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के जरिए ईरान पर दबाव बनाने के साथ ही अपना दूसरा लीवर भी एक्टिवेट कर दिया, हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वॉशिंगटन ने एक अर्जेंट पिटीशन फाइल करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तेहरान को अमेरिकी बंधकों को रिहा करने के लिए मजबूर करने को कहा। अमेरिकियों के लिए इस रास्ते के दो मकसद थे, पहला इंटरनेशनल कानून के दायरे में एक जरूरी सपोर्ट हासिल करना, दूसरा उस सपोर्ट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ पब्लिक प्रेशर बढ़ाने के लिए करना। लेकिन तेहरान जिस वजह से सिक्योरिटी काउंसिल को बायस मानता था, उसी वजह से हेग पर भी भरोसा नहीं करता था। कोर्ट के प्रेसिडेंट को एक टेलीग्राम में नए बने विदेश मंत्री सादिक कुतुबजादे ने लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक कोर्ट का पूरा सम्मान करता है, लेकिन उसके पास इस मामले पर आदेश का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो एक बहुत बड़े मामले का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा मामला जिसकी जड़ें 1953 के तख्ता पलट में हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ईरानी अमेरिकी रिश्तों में सॉवरेनिटी के उल्लंघन और दखल का एक लंबा इतिहास रहा है। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दक की कानूनी सरकार के खिलाफ 1953 में तख्ता पलट पहलवी शासन और उसके जासूसी मैकेनिज्म सावाक को बिना शर्त सपोर्ट देने जैसा था। इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर विचार किए बिना कोई फैसला कैसे दिया जा सकता है? उन्होंने जोर देकर कहा कि यूएस सरकार ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के साथ मिलकर ईरानी राष्ट्रीय सरकार को उखाड़ फेंका और ईरान के तेल संसाधनों पर फिर से कब्जा करने का रास्ता साफ किया। उन्होंने कहा कि इस दखल ने ईरानी लोगों के अधिकारों के साथ अन्याय का एक सिलसिला शुरू किया जो अगले 25 साल तक जारी रहा। ईरानी डिप्लोमेटिक लॉजिक में बंधक बनाना कोई बिना उकसावे का काम नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अपमान और उल्लंघन के इस लंबे इतिहास पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन दलीलों को नजरअंदाज करते हुए बहुत तेजी से काम किया। इसने एक खास सेशन बुलाया, पार्टियों की दलीलें सुनी गईं और कुछ ही समय में फैसला सुनाया गया। ईरान बंधकों को तुरंत रिहा करने के लिए बाध्य है। यह फैसला अमेरिका के लिए एक कानूनी जीत थी, लेकिन ईरान के लिए यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था। ईरानी स्टूडेंट्स ने इस फैसले को दुनिया की जनता की राय को धोखा देने का एक जरिया बताया। एक ऑफिशियल बयान में रिवॉल्यूशनरी काउंसिल ने हेग के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया एक तरफा और नाजायज फैसला करार दिया। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? उस समय के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साइरस वेंस ने वर्षों बाद इसका जवाब दिया। हम जानते थे कि ईरान हेग के फैसले को नज़रअंदाज करेगा, लेकिन यह फैसला तेहरान पर दुनिया भर का दबाव बढ़ाने के लिए काफ़ी था। असल में वाशिंगटन के लिए हेग एक कानूनी अथॉरिटी से ज़्यादा एक मीडिया प्लेटफॉर्म था। इसका मकसद दुनिया के अखबारों में यह हेडलाइन बनवाना था, इंटरनेशनल कोर्ट ने ईरान को इंटरनेशनल कानून तोड़ने के लिए जिम्मेदार माना है। यह तरीका दबाव बनाने की स्ट्रेटजी का दूसरा कदम था, एक ऐसा कदम जिससे तेहरान पूरी तरह से अकेला पड़ जाता। इस बीच डेमोक्रेटिक सेनेटर और कार्टर के विरोधी एडवर्ड कैनेडी के विवादित लेटर की खबर एक न्यूज़ बॉम्बशेल बन गई। जब तेहरान और वाशिंगटन कानूनी लड़ाई में व्यस्त थे, तब एक ऐसी खबर छपी जिसने दोनों देशों के सियासी गलियारों को एक धमाके की तरह हिला दिया। तेहरान टाइम्स ने 11 दिसंबर 1979 को लिखा, एडवर्ड कैनेडी डेमोक्रेटिक सेनेटर और जिमी कार्टर के चुनावी विरोधी ने इमाम खुमैनी को एक लेटर भेजा है। प्रेस में छपा टेक्स्ट हैरान करने वाला था। इस लेटर में कैनेडी ने न सिर्फ इस्लामिक क्रांति की तारीफ की, बल्कि यह भी कहा, हम इस्लामिक रिपब्लिक का 100% सपोर्ट करते हैं। आपने 11 महीनों में दुनिया बदल दी है, भले ही इसके लिए मुझे अपना खून देना पड़े, मैं आपका साथ दूंगा। इन बातों ने देश और विदेश के मीडिया में हलचल मचा दी। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि अमेरिकी सियासी गलियारों में गहरी दरार पड़ गई है। अगर ये मनगढ़ंत था तो सवाल ये था कि ऐसा खेल किसने और किस मकसद से शुरू किया है। अखबार बामदाद के रिपोर्टर ने दावा किया कि उन्हें सैयद अहमद खुमैनी से इस लेटर का कन्फर्मेशन मिला है। यहाँ तक कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कन्फर्म किया कि कैनेडी का साइन किया हुआ एक टेलीग्राम उनके पास पहुँचा था, जिसे इमाम के ऑफिस में भेजा गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद सेनेटर कैनेडी ने कहानी की सच्चाई से इनकार कर दिया। अब इससे इंटेलिजेंस ऑपरेशन की बू आ रही थी।